ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. தோ சப் பக்தங்க மேம் ஸ்வாகத் கரனா சாத்தா ஹூ பாகவதம் கிளாஸ் மே. தோ ஆப் சப் சுபே சுபே பிராத்காலீன் யஹாம் பர் எகத்ரித் ஹுயே. தோ ஆப் சப்கா பஹுத் பஹுத் தன்யவாத். तो भागवतम की पूरा चर्चा करने से पहले हम छोटा सा एक वैष्णव भजन गाएंगे जिसका नाम है गोपीनाथ मम निवेदन सुन. तो जो है आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पीछे जो है दोहरा सकते हैं और इस भजन को हम गा सकते हैं. गोपीनाथ मम निवेदन सुन गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा काम रता किछु नहीं मोर गुण विषय दुर्जन सदा काम रता किछु नहीं मोर गुण गोपीनाथ अमरा भरोस तुमी तोमार चरणे लइनु शरण तुमर किंकर
Yeah.
Gopina tumita sakal para Gurjan tarite tumara shakati ke ache papir ara Gopina tumi kripa parvara jivar karane asiya prapanche lila kailo suvistara Gopina dami ke doshi doshi asur sakala parilo charana vinoda thakil vasi Sakala Pailo Charana Vinoda Thakila Vasi Asura Sakala Pailo Charana Vinoda Thakila Vasi Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jaya Krishna Balram Krishna Balram Krishna Balram Jaya Krishna Balram परमहंसपुर जी का आचार्य स्तोत्र सत्ता हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीपीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंसपुर जी का आचार्य स्तोत्र सत्ता हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई मास प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की वृद्धि तुलसी महारानी की श्री नाम संकीर्तन की निधाय गौर प्रेमानंद All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Shishi Guru and Gauranga. Nitai Gaur Pramananda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. నమస్కృత్యం నరం చేవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ యూతం శ్లోకే భక్తి భవతి నైష్టికీ శన్వతం స్వాకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయ అనుస్థితో హి అభద్రాణి విదునోతి సురిత్సతా. హరే కృష్ణ. తో మే ఆప్ సబ్ భక్తోం కా స్వాగత్ కర్నా చాహతా హూం ఇస్ భాగవతం క్లాస్ మే, ఔర్ సబ్కా ధన్యవాద్ కర్నా చాహతా హూం కి ఆప్ సబ్ ఇస్ ఛుట్టి వాలే దిన పర్, నేషనల్ హాలిడే ఆజ్, గణతంత్ర దివస్ హై, రిపబ్లిక్ డే హై, తో ఆప్ సబ్ రాధికా రమణ్ జీ కృష్ణ బాల మందిర్ మే ఆప్ సబ్ ఆయే ఔర్ సుబహ ప్రాతకాలీన భాగవత్ కా శ్రవణ కర్నే కే లియే ఆప్ సబ్ ఏకత్రిత్ హుయే, తో ఆప్ సబ్ భక్తోం కా బహుత్ బహుత్ ధన్యవాద్. तो आज जो है हम भागवतम के आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय से दसवें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे. तो श्लोक के उद्धरण करने से पहले और उसको के तात्पर्य और अनुवाद पढ़ने से पहले और उसको चर्चा करने से पहले मैं सब वरिष्ठ भक्तों का से आशीर्वाद की याचना करना चाहता हूं कि मुझे इतना अनुभव नहीं है भागवतम के ऊपर बोलने के लिए, ना मुझे योग्यता लगती है, लेकिन आदेश अनुसार और उनकी आशीर्वाद की याचना करके मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूं कि आपके सामने मैं इसके ऊपर कुछ चर्चा कर पाऊं. तो उनसे प्रार्थना करते हुए मैं अब इस भागवत श्लोक के ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं. तो आठवां स्कंद का तीसरे अध्याय का दसवां श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो कृपा करके आप मेरे पीछे दोहराइए. नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिने परमात्मने नमो गीरां विदुराय मनस चेतसामपि. शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा. श्री प्रभुपाद की नमः. मैं नमस्कार करता हूं आत्म प्रदीपाय, आत्म प्रकाशित को या जीवों को प्रकाश देने वालों को. मैं आस्ते बोलता हूं ताकि कम शब्द बोलता हूं ताकि आप दोहरा सके. आत्म प्रकाशित को या जीवों को प्रकाश देने वाले को साक्षी ने प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित परमात्मने परमात्मा में नमः नमस्कार करता हूं गिराम वाणी से विदुराया अत्यंत दूर अगम्य मनसा मन से चेतसाम या चेतना से अपि भी. अनुवाद. मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, वृष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता. कृपा करके मेरे पीछे अनुराग कराइए. मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता. तात्पर्य. भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होता है, इसलिए भगवान को यहां पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक है उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। अपने मानसिक शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब भक्तों का और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से और हम आठवें स्कंध के ऊपर हैं और तीसरे अध्याय पर हैं। उसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण की स्तुतियां, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस दसवें नंबर श्लोक पर अब हम हैं। और गजेंद्र जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, क्योंकि वो एक बहुत ही संकट की स्थिति में है और प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उन भगवान का नमस्कार करता हूं जो आत्म प्रदीपाय है। आत्म प्रदीपाय का मतलब जैसे प्रभुपाद जी हम समझाते हैं कि भगवान जो कि स्वयं ही प्रज्वलित है, उनको किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, उनके शरीर से ही कांति निकलती है, जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। या फिर आत्म प्रदीपाय का एक और मतलब प्रभुपाद समझाते हैं कि जो कि अन्य जीवों को अपने बारे में ज्ञान देते हैं, उनको अपने बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं, उसका मतलब है आत्म प्रदीपाय। तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। गजेंद्र जो है वो इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना कर रहा है, उनको समर्पण की स्तुतियां गा रहा है। तो भगवान को नमस्कार करता है और फिर भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप आत्म प्रदीपाय हैं, आप साक्षी ने हैं। साक्षी ने मतलब जो साक्षी हैं, आप सबके हृदय में रहकर जो भी वो क्रिया करते काम करते उसके आप साक्षी हैं। परमात्मा ने, और आप परमात्मा के रूप में उनके हृदय में स्थित हैं, तो मैं उनको आपको नमस्कार करता हूं। और आपको समझना विदुराय, विदुराय मतलब असंभव है, बहुत दूर है। किससे समझना? गिराम, गिराम का मतलब वाणी से। वाणी से कोई भगवान को बिना भक्ति के समझा नहीं सकता या बता नहीं सकता, या मनसा या मन भगवान को नहीं समझ सकता अपने प्रयास से, या चेतसम मन चेतसम, या उसकी चेतना भी भगवान तक नहीं पहुंच सकती बिना भगवान की मंजूरी के, उनकी कृपा के। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, तो प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज जो है वैसे गणतंत्र दिवस है और छुट्टी है, और आज हमारा संविधान बना 1950 में, और 66 रिपब्लिक डे है, तो पूरी दुनिया छुट्टी बना रही है, टीस हिंदुस्तान पूरी छुट्टी बना रहा है, और इस दिन कई का उत्सव के रूप में आज परेड भी निकलेगा राजघाट पर, और सब राजपथ पर, क्षमा कीजिएगा, राजपथ पर आज परेड भी निकला है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट भी आए हैं, और अपने आप में सब उसकी इंतजार कर रहे हैं। और हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद से कुछ सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए उसको गणतंत्र दिवस हम बना रहे हैं। लेकिन असली में स्वतंत्रता सिर्फ किसी अंग्रेजों का राज्य था जिससे देश को स्वतंत्रता मिली वास्तव रूप में, लेकिन भागवत कहती है कि असली स्वतंत्रता क्या है, रियल इंडिपेंडेंस क्या है, जब व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। असली स्वतंत्रता यह है जो कि इस एक जीव को प्राप्त हुई। तो असली में उस स्वतंत्रता की बात भागवतम कर रही है, और ये एक जीव स्वतंत्र हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है, इसलिए इसका वर्णन है कि कैसे एक व्यक्ति एक जीव जो है वो उसे भगवान की प्राप्ति की, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, उत्सव है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में, अगर मैं सही हूं कि अगर, या प्रीफेस में, कि अगर इस किताब लिखने का उद्देश्य यह है कि अगर इसको समझकर एक जीव भी ये ज्ञान प्राप्त करके भगवद्धाम जा सकता है तो मेरा प्रयास सफल। जय श्री श्री राधा राधे कन्हैया मन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भगवान यथा की। तो अगर मैं पूरा इस ग्रंथ का अनुवाद और तात्पर्य लिखने के बाद अगर एक जीव भी संदेश को समझ जाए और भगवान की प्राप्ति कर पाए और भौतिक संसार से मुक्त हो पाए तो मेरा, मैं अपने प्रयास को सफल कर पाऊं, सफल मानूंगा। अगर एक जीव भी, अनंत जीवों में से अगर एक जीव भी भगवान की प्राप्ति कर ले तो मेरा प्रयास सफल है। तो वो ये चर्चा चल रही है कैसे गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हो, कैसे उनको भगवान प्राप्त हो, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वास्तव रूप में गजेंद्र का मोक्ष से वास्तव रूप में एक्चुअली में मोक्ष महाराज इंद्रदुम्न का है। हम जब कथा आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि तमिल देश के, द्रविड़ देश के, साउथ इंडिया के एक राजा थे महाराज इंद्रदुम्न, और वो एक वैष्णव राजा थे, तो राज भी करते थे और भक्ति भी करते थे। तो जैसे वो वृद्ध हुए तो उन्हें निर्णय लिया कि या मैं वृद्ध हो गया हूं तो मुझे अपना उत्तरदायित्व अपने बाकी वंशाली को देकर अब भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो उन्हें सब छोड़कर वहां मलायचल पर्वत है वहां पर अपने एक आश्रम बनाया और वहां पर भगवान की भक्ति करने लगे। तो मौन रखकर भगवान पे ध्यान लगाते थे, लेकिन भगवान की इच्छा ही अनुसार क्या हुआ कि वहां पर अगस्त्य मुनि आए, और अगस्त्य मुनि आए और वहां पर उस आश्रम पे पहुंचे, लेकिन देखा वो तो बिल्कुल ध्यान में मग्न थे, तो वो जो चाहते थे या स्वागत चाहते थे वो उनको दे नहीं पाए। तो अगस्त्य मुनि भाई क्रोधित हो गए और उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें एक वैष्णव का, एक भक्त का, एक संत का स्वागत भी नहीं करना आता तो जाओ तुम एक स्तब्ध मति वाले एक पशु बन जाओ। और स्तब्ध मति वाला पशु कौन होता है? एक हाथी। तो तुम्हें हाथी की योनि प्राप्त हो, ऐसे श्राप दे देते हैं। तो महाद्रमण को लगता है कि उनके लिए तो एक अचंभे वाली बात थी कि वो तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, कि अचानक एकाएक संत आए और उनको अपमानित महसूस हुआ, उनको श्राप भी मिल गया। लेकिन उनका क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिस्पॉन्स था कि उनको धन्यवाद करने लगे कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे श्राप दिया, क्योंकि संतों का श्राप में भी उनका वरदान होता है। जैसे जब नल कुबेर और मणिगिरि को किसने श्राप दिया? नारद मुनि ने। क्या श्राप दिया? कि आप कौन से आंगन में दो वृक्ष बनो? नंद महाराज के आंगन। और आपका उद्धार कौन करेगा? स्वयं कृष्ण। तो गुस्से से श्राप दिया लेकिन एक वरदान के रूप में दिया। तो उनको श्राप मिला तो उनका धन्यवाद करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि एक वैष्णव जो होता है वो स्वतः ही भगवान की भक्ति करके निडर हो जाता है। उनको पता है कि क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हूं, चाहे त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, परफेक्ट ना भी हो, लेकिन क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो निश्चित रूप से भगवान मेरी रक्षा करेंगे और भगवान मेरे प्रयासों को सफल करेंगे और मैं भक्ति में सफल हूंगा और कभी ना कभी देर सवेर जो है उनके चरण कमलों को प्राप्त करूंगा। ये उसको विश्वास होता है, अवश्य रक्षी वो कृष्ण, अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करें, मैं उनको प्राप्त करूंगा। तो उसके जीवन में जो भी घटता है वो भगवान का हाथ देखता है उसमें। अब ये बहुत ऊंची चेतना है तो उसको श्राप मिला उनको, तो उसको लगा कि ये भगवान की मंजूरी है इसमें, तो धन्यवाद करने लगा और श्राप को उन्होंने स्वीकार किया। जैसे भागवत में लिखा है कि नारायणा परा सर्वे न कतुश्चिन्न भिपदीयते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यापि दर्शन। जो नारायण के परायण है, नारायण के जो भक्त है, नारायण परायण सर्वेशु, नारायण परायण न कतुश्चिन्न भिपदीयते, वो किसी भी स्थिति में घबराते नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति, नरकेशु नर्क तुल्यापि दर्शना, उनके लिए एक ही समान है। तो उसी स्थिति में महाराज इंद्रदुम्न से उन्होंने स्वीकार किया और फिर उनको हाथी की योनि प्राप्त हुई। लेकिन हाथी की योनि भी जो है वो ऊंचे लोकों में प्राप्त हुई, ऐसे लोक में प्राप्त हुई जहां पर समुद्र था दूध का। जैसे हमारे लोक में तो समुद्र किसका है, नमकीन के पानी का, वहां पर समुद्र था दूध का, पूरा समुद्र दूध का था। उसमें बहुत ही विशाल पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकूट और पर्वत की ऊंचाई कितनी थी बताते हैं 10,000 योजन। एक योजन कितने मील होता है, 8 मील, तो 80,000 मील लंबा वो पर्वत था, 80,000 माइल्स। तो मैं देख रहा था कि माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, तो मुझे पता चला, मैंने जब देखा इंटरनेट में तो देखा जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,850 मीटर, मतलब समझ लीजिए 9.25 किलोमीटर, 9 किलोमीटर समझ लीजिए। लेकिन ये पर्वत कितना ऊंचा था, 80,000 मील ऊंचा पर्वत, और उतना ही 80,000 मील चौड़ा था और इसी 3 चोटियां थी। पर एवरेस्ट की चोटी में तो बर्फ है, लेकिन इस त्रिकूट पर्वत की चोटियों में 3 चोटी कौन कौन सी थी, एक चोटी थी लोहे की, एक चोटी थी चांदी की और एक थी सोने की। और इतना सुंदर पर्वत था और बीचों बीच उस दूध के समुन्द्र के बीचों बीच था और बहुत ही हरियाली थी, सभी वहां पर फल और पेड़ थे, झरने थे, उसकी सुंदर आवाज आती थी, उसकी सुगंध आती थी, उद्यान थे, नदी थी, तालाब थे और सभी किस्म के पक्षी थे और वहां पर पूरे साल भर अलग अलग फल और फूल पैदा होते थे। वहां पर जो है ऊंचे लोगों के लोग जो है सिद्ध लोग गंधर्व वहां पर जाकर क्रियाएं करते थे। जैसे लोग माउंट एवरेस्ट पे माउंटेनियरिंग करते हैं तो वहां पर ऊंचे लोगों के लोग जो है वहां पर जाकर अप्सराओं के साथ क्रियाएं करते थे। वहां पर गुफाओं में किसी गुफा में गंधर्व लोग होते थे, किसी में सिद्ध लोग, किसी में चारण लोग, ऐसे प्राप्त दिखाई ये दर्शन दिखाई देता। तो ऐसे लोग में महाराज इंद्रदुम्न को किसका शरीर प्राप्त हुआ, एक हाथी का, और हाथी के भी वो राजा थे गजेंद्र, गजपति थे और बहुत बलवान थे और जो है वो उनको हाथी का प्राप्त शरीर प्राप्त हुआ, हाथियों में वो राजा बने। और एक दिन क्या हुआ कि वो महाराज इंद्रदुम्न जो है वो एक ऐसे ही सैर पे चले, जैसे होता ना एक स्ट्रोल पर एक सैर पर चल पड़े और उनके साथ उनके बाकी सगी संबंधी थे, पत्नियां भी थी, बच्चे भी थे, और ऐसे घूमने लगे और पूरे इस दृश्य का आनंद उठाने लगे। और रास्ते में जो भी पेड़ पौधा आता उसको क्रश करते हुए आगे बढ़े। तो उनको अचानक प्यास लगी और प्यास लगी तो उस तालाब था, उस तालाब में पानी पीने के लगे, वहां स्नान भी करने लगे और पानी पीने लगे। और जब पानी पीने लगे तो क्योंकि वो खेलने लगे उस तालाब में और पानी पीने लगे तो जो उस तालाब के बाकी जीव थे उनको कुछ खतरा अनुभव हुआ, उनको डिस्टर्बेंस महसूस हुई। और जैसे डिस्टर्बेंस महसूस हुई तो उसमें जो एक घड़ियाल का राजा था उसने आक्रमण कर दिया और एकाएक उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, दबोच लिया और जोर से खींचा। तो अचानक एक विपरीत एक जो है एक विपदा खड़ी हो गई। जैसे भागवत में लिखा है कि पदम पदम यद विपदाम नतेशम समाशिता ये पाद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधेर वश पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतीशम। कि संसार का कैसा स्वभाव है, पदम पदम हर पद पर क्या है, विपदा है। पदम पदम यद विपदाम नतीशम, सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक फोन कॉल आता है और कुछ गलत खबर सुनने को मिलती है, या न्यूज देखते हैं तो कुछ दुर्घटना पता चलती है, या हमारे कुछ जीवन में कुछ घटित हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। ये नहीं पता कि कब विपदा की घड़ी आ जाएगी। ये संसार ऐसा है, यहां पर हर क्षण में कोई एक हानि हो सकती है, कुछ दुर्घटना हो सकती है। जैसे कुछ महीने पहले एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली जू गया, दिल्ली जू गया तो वो देखने तो गया था पशुओं को, मनोरंजन के लिए गया था। तो वो जो है वो शेर के पास, सब अलग अलग जितने भी पिंजरे थे, अब शेर के जो शेर के पिंजरे के पास गया तो उसके पता नहीं क्या मन में आया कि जो है एक कदम फालतू लेता, तो उसने उस फेंस को पार किया तो अचानक क्या हुआ, वो उस पिंजरे में गिर गया। और अब उस वो था और शेर था, तो अब सब लोग ऊपर देख रहे थे। अब मतलब ये सब इतना अचानक हुआ कि उसको समझ में नहीं आया, देखो इतना घबरा गया तो शेर को प्रणाम करने लगा, शेर से माफी मांगने लगा, और शेर को लगना मेरे साथ शायद खेल रहा है, वो पैर मारने लगा। तो उसको लगा कि मैं कैसे निकल सकता हूं, सब लोग देख रहे हैं, गार्ड भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, और लोगों ने क्या किया, पत्थर मारने शुरू कर दिए, किस तरीके से पत्थर मार के शेर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही शेर को पत्थर मारा क्या हुआ, शेर जो है और क्रोधित हो गया और तुरंत उसने क्या किया, उस व्यक्ति की सीधा गर्दन को पकड़ा मुंह से और दबोच के ले गया और व्यक्ति खत्म हो गया। अचानक वो इसलिए थोड़ा जू गया था कि मैं शेर के मुंह में आके जो है जीवन अंत करूंगा, नहीं, वो तो पता ही नहीं था, वो तो घूमने गया था, मनोरंजन करने गया था, और अचानक ऐसा हो गया कि वो गिर गया और कुछ ही मिनटों में जो है वो उसका शिकार बन गया। तो पदम पदम यद विपदा नतीशम, हर पद पे विपदा। लेकिन भागवत क्या कहती है, समाशिता ये पाद पल्लवम। लेकिन सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है कि वो क्या करता है, समाश्रिता ये पाद पल्लवम, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण है पल्लवम एक नाव के समान है, उनकी शरण ले लेता है। महत पदम पुण्य यशो मुरारी, जिनके चरणों में महत पदम पूरी दुनिया जो है निवास करती है, पुण्य यशो मुरारी, ऐसे मुरारी का यश महान है। भवान बुधिर, जब भगवान की कोई चरणों की शरण लेता है तो क्या होता है, भवान बुधिर, जो पूरा भव सागर है, जो एक समुद्र के समान है, अम्बुधिर एक समुद्र के समान है, भवान बुधिर वर्ष पदम, जब भगवान की कोई चरणों की शरण ले लेता है तो क्या होता है कि पूरा भव सागर, पूरा भौतिक संसार कैसे बन जाता है, वत्स पदम। वत्स जो है किसको कहते हैं, गाय के बछड़े को। पदम उसके पैर में जितना पानी आ जाता है, कितना पानी आता है, थोड़ा सा मुट्ठी भर, तो पूरे भौतिक समुद्र, भौतिक सागर, भौतिक संसार जो है इस एक बिछड़े के पैर के जितना पानी होता है उतना समान आ जाता है। उसको पार कितना मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान। एक बछड़े के जो पैर में पानी आता है उसको पार करना बहुत आसान है, आधे कदम में ही आप पार कर लें। तो भगवान की शरण लेने से क्या होता है कि इतना बड़ा समुद्र एक छोटे से पैर में आए पानी के समान बन जाता है। भगवान बुधेर वर्ष पदम परम पदम, और वो पार करके परम पदम भगवान के धाम को चले जाता है, और उस संसार में नहीं रहता। पदम पदम यद विपदा नतीशम, जिसमें हर पद पर कोई ना कोई विपदा है, कोई ना कोई परेशानी है, कब आ सकती है पता नहीं, अभी भी चल रही है विपदाएं, और कभी नई विपदा या परेशानी आ जाए नहीं पता। तो समय क्या करना चाहिए, तुरंत भगवान की शरण लेनी चाहिए। और गजेंद्र और ये महाराज गजेंद्र क्योंकि भक्त थे, तो जैसे उनके विपरीत परिस्थिति आई, जैसे ही मुश्किल आई, उन्होंने क्या किया, पहले तो लड़ने लगे। हाथी के रूप में थे तो उन्होंने घड़ियाल को पानी से बाहर निकाला, क्योंकि वो जमीन के पशु हैं, और घड़ियाल ने क्या किया, वो पानी का पशु है तो पानी के अंदर खींचा, तो लड़ाई शुरू हो गई। वो पानी से बाहर निकालते और घड़ियाल पानी के अंदर खींचता, लेकिन घड़ियाल का एक एडवांटेज था, उस क्रोकोडाइल का एडवांटेज था, क्या एडवांटेज था कि वो पानी में था, पानी का पशु था, तो उसके पैर को पकड़ा था और पैर के खून को चूस रहा था, तो उसका तो भोजन उसको प्राप्त हो रहा था, और पानी में था तो इसलिए उसकी शक्ति बढ़ रही थी। लेकिन हाथी जमीन का पशु था, वो पानी के अंदर था, तो उसकी उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी और वो खूनों खून हो रहा था। और ये लड़ाई जो है वो एक दिन कुछ घंटे, एक दिन कुछ हफ्ता महीना नहीं चली। ये लड़ाई जो है बताते हैं भागवतम में लिखा है कि 1000 देवताओं के वर्षों तक चली। 1000 इतने शक्तिशाली दोनों थे, लेकिन एक घड़ी ऐसी आ गई कि अब हाथी को लगा, उस गजेंद्र को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मेरा जीवन का अंत है। तो वो देखने लगा, बाकी रिश्तेदारों को देखने लगा, अपने बाकी भाई बंधु जो बाकी दोस्त यार थे उनको देखने लगा, लेकिन क्योंकि वो घड़ियाल इतना शक्तिशाली था किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको आके बचा सके। तो वो आशा की उम्मीद से देख तो रहा था, मैं उसको कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो उसके मन में आया, अरे कि मेरे दोस्त यार भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर मेरी पत्नियां मेरी रक्षा कैसे करेंगे, मेरे छोटे बच्चे मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसने सारी उम्मीद जो है वो छोड़ दी, और आखिरी में उसको लगा, उसको भगवान ने बुद्धि दी, उसको लगा वास्तु रूप में अगर कोई मुझे बचा सकता है वो कौन है, हरि कृष्ण बचा सकते हैं। तो जब उसके मन में ये निर्णय आ गया, जब उसको लगा कि बस अब आखिरी घड़ियां हैं, तो उसने तुरंत भगवान की शरण ली। और क्योंकि वो भक्त था तो भगवान ने मदद की, और भगवान ने कैसे मदद की, अपनी स्मृति देकर। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मतः स्मृतर ज्ञानम अपोहनम चा सर्वस्व चाह मृदि सनिविष्टो, क्योंकि सबके हृदय के अंदर स्थित हूं। तो जैसे ही कोई भगवान की शरण लेना चाहता है तो भगवान तुरंत मदद करते हैं, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि जय जीव जो है कब मेरी शरण लेना चाहेगा। वो इच्छा ही कोई करता है तो भगवान तुरंत जो है वो कार्य करते हैं और उसकी मदद करना चाहते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो जैसे ही गजेंद्र ने सब उम्मीद खो दी और उसने भगवान की शरण लेनी चाही, भगवान को भगवान से वो प्रार्थना करना चाहता था, भगवान से मदद चाहता था, जैसे उसने मुख भगवान की तरफ किया तो भगवान ने तुरंत उसकी मदद की और उसको स्मृति दिलाई। क्या स्मृति दिलाई, कि उसने पिछले जन्म में जो भक्ति की थी, जो प्रार्थना याद की थी, तुरंत उसको प्रार्थना याद आने लगी स्वतः ही ऑटोमेटिकली, और उसको वो गाने लगा, उसको बोलने लगा, जबकि वो एक स्तब्ध मति वाला पशु था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको जो है वो मति दी, वो बुद्धि थी, और भगवान की वो स्तुतियां करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। कि भगवान का स्वभाव है, जब रामायण में हम देखते हैं युद्ध कांड में, जब विभीषण, जब भगवान बिल्कुल समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं और पारी करने वाले होते हैं और युद्ध निश्चित होता है, तो विभीषण जो है वो रावण को छोड़कर, त्याग कर रावण को भगवान की शरण लेने के लिए आता है। तो भगवान और जितने भी संगी गण हैं, हनुमान और जितने भी वहां के भगवान के साथ थे, तो वो देखने लगे कि उस तरफ से विभीषण और कुछ असुर आ रहे हैं, कुछ राक्षस आ रहे हैं। तो सबको शक होने लगा कि क्या आक्रमण तो नहीं करने लगे। जब विभीषण पहुंचे तो उन्होंने संदेश भेजा दूर से कि मैं आक्रमण नहीं करना चाहता, मैं भगवान श्री राम की शरण लेना चाहता। तो सभी को लगा, रही तो कोई जासूस के रूप में हमारी शरण ले ले, बाद में हम पर ही आक्रमण कर दे। तो सब विरोध थे, नहीं विभीषण को शरण नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब भगवान को ये बात पता चली तो भगवान ने बहुत प्रशिष्ट श्लोक बोला जो रामायण के युद्ध कुंड में हमें प्राप्त होता है, युद्ध कांड में हमें प्राप्त होता है। भगवान क्या कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नो यस तब अस्मि च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्वितं मम। बड़ी सरल संस्कृत क्या लिखा है, सकृत कोई एक बारी भी, एवं प्रपन्नो यस प्रपन्न मेरी शरण लेता है, कोई एक बारी भी अगर कोई मेरी शरण ले ले, सकृत अगर एक बार भी शरण ले लेता है, और क्या कहता है, तब अस्मि भगवान मैं आपका हूं, मुझे रक्षा दीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आता हूं, तब अस्मि च याचते, वो ये कहता है भगवान मैं अब आपका हूं, मुझे रक्षा कीजिए। कोई एक बार भी ये बोल देता है तो अभयम सर्वदा तस्मै ददामि व्रतम ममा, तो अभयम उसको अभय बनाना, उसको निडर बनाना, उसको शक्ति देना, सर्वदा ददामि ये मैं दूंगा, व्रतम ममा ये मेरा व्रत है। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कोई मेरी शरण न में आता है, मैं शरण लेता है, कोई एक बार ही बोल देता है भगवान मैं आपका हूं, तो मेरा व्रत बन जाता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको शरण दूं। तो फिर भगवान विभीषण को शरण देते हैं और फिर बोल घोषित कर देते कि आज से जो है तुम जो है वो लंका के अब आगे जाके राजा बनो। तो ये भगवान का व्रत है। तो इसलिए जब वो जैसे ही गजेंद्र शरण लेता है तुरंत भगवान उसकी मदद में आते हैं और फिर उसको स्तुति याद आती है, वो तुरंत गाने लगता है और भगवान को याद करने लगता है। और जैसे ही याद करता है तो श्लोक बोलते रहता है और बोलते बोलते जो है वो इस श्लोक पे आता है। और मैं एक भक्त मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो भक्त भी ये रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कैसे भगवान स्मृति देते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं एक बारी औरंगाबाद जा रहा था, स्टेशन से बॉम्बे से औरंगाबाद जा रहा था। तो स्टेशन में जैसे ही बैठा, रात का समय था कुछ, तो मैं गीता खोलकर बैठ गया, गीता का पढ़ाई करने लगा, गीता को पढ़ने लगा। तो मेरे साथ में एक और व्यक्ति था जो बिल्कुल साथ वाले बेड पर बैठ रहा था, तो मुझे देख रहा था और मैं गीता पढ़ रहा था। तो उसने कहा, स्वामी जी, उन्हें भक्त ने हाथ आंखें ऊंची की ओर पूछा, हाँ हाँ जी बोलिए। तो स्वामी जी, आपसे प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ पूछे ना, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्हें कहा, मैं तो गीता पढ़ रहा हूं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, गीता पढ़ी होगी और अन्य शास्त्र पढ़े होंगे, तो आप सार रूप में एक वाक्य में बता सकते हैं गीता का पूरा सार क्या है? एक वाक्य में सभी गीता का सार बता सकते हैं? तो भक्त सोचने लगा, रे एक वाक्य में क्या बताऊं, मैं 25 साल से इतनी सारी किताबें पढ़ रहा हूं और ये भक्त कह रहे हैं कि एक ही वाक्य में बताइए, अब एक वाक्य में कैसे बताऊं? तो सोचने लगे। हम, मैं तो लेक्चर 2 घंटे का, तो कम से कम एक लेक्चर होता है ना, कुछ 7 डे का सेमिनार होता है। और गीता भगवान ने संक्षिप्त रूप में 700 श्लोकों में दिया, वेद तो अनंत है, भगवान ने गीता ही सार रूप में 700 श्लोक में दिया, मैं एक वाक्य में कैसे बताऊं? तो उनको याद नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचने लगे, तो सोचते सोचते तुरंत अब वो उस व्यक्ति जो व्यक्ति वो भक्त को देख रहा था, वो उनको देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब श्लोक बोलूं, क्या सार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक ही उनको एक स्मृति हुई, उनको याद आया। क्या याद आया? कि वो जब ऐसे ही भागवत क्लास में बैठे थे, तो वरिष्ठ सन्यासी थे माँ विष्णु स्वामी, उनके मुख से वो सुनने लगे, और उनके मुख से उन्होंने एक वाक्य सुना था जो महाराज ने बताया था, सभी वेदों का सार है। तो अचानक एकाएक उनके हृदय में वो वाक्य आ गया और तुरंत ऐसी घंटी बजी। तो उनका, ठीक है बाबू जी, मुझे समझ में आ गया, एक वाक्य में वेदों का सार आपको बता देता हूं। तो भक्त, वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। लेकिन भक्त ने पूछा, आपको एक ही वाक्य में क्यों चाहिए? कहने लगा, पूछिए, अगला सेशन मेरा ही है मुझे उतरना है, तो कृपा करके एक ही वाक्य में बताइए, मैं गीता का पूरा संदेश नहीं सुन सकता। तो ठीक है, एक ही वाक्य में आपको पूरा गीता भागवत सभी वैदिक शास्त्रों का सार बताता हूं। तो जो उनने महाराज से सुना था, तुरंत उनको याद आ गया और उन्होंने बोला, और क्या बोला? उन्होंने बोला, वाक्य क्या है कि कृष्ण मेरे पति, कृष्ण है मेरे गति, उनमें लगाओ मति तो जागेगी रति। अब एक ही वाक्य में पूरा हो गया। तो भक्त बता रहे थे, आप देखें इसी वाक्य में संबंध, आभिधेय, प्रयोजन, तीनों ज्ञान। कैसे? संबंध ज्ञान क्या है? कृष्ण मेरे पति, है ना, कृष्ण मेरे मालिक। कृष्ण मेरे गति, कृष्ण ही मेरे गति है, कृष्ण ही मेरे मालिक है, मैं कृष्ण का ही अंश हूं, संबंध ज्ञान पूरा। अभिधेय, उनमें लगाओ मति, है ना मन उनमें लगाओ, वो अभिधेय, रास्ता कैसे भगवान को प्राप्त करने का, मन मनाभाव मत भक्तो, उनमें लगाओ मति, और जब मति लग जाएगी तो क्या होगा, तो जागेगी रति, बस प्रयोजन भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो मैं इसी वाक्य में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों है। तो तुरंत वो बता रहे थे कि मैं तो गीता से सोच रहा था, तुरंत भगवान ने स्मृति दिलाई और मुझे याद आ गया और मैंने उनके सामने रखा। वो भी बड़े खुश हो गए, मैं बड़ा खुश हो गया कि सार रूप में जो है सभी वेद शास्त्रों को बता दिया। फिर अगला सेशन आया, वो उतर गए। भगवान स्मृति देते हैं, जब जरूरत पड़ती तो देते हैं, जैसे गजेंद्र को दी। और फिर वो श्लोक पे आए और फिर गजेंद्र नमस्कार कर रहा है भगवान, भानु कह रहे हैं, भगवान आत्म प्रदीप आया। वास्तविक रूप में कोई मन से, वाणी से या अपनी बुद्धि से आपको नहीं जान सकता, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षर, अक्षर मतलब इंद्रियां, अधा मतलब जो उसको उसके परे है, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षर। तो भगवान को कोई मन से, वाणी या इंद्रियों से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवान की प्राप्ति होती है जब भगवान ही उसको बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई भगवान के बारे में जानना चाहता है तो उसको गीता और भागवत में से पढ़ना पड़ेगा, गीता भागवत, भागवत से उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। चैतन्य चैतन्य में श्लोक आता है कि माया मुग्धरे जीव नहीं स्वधा कृष्ण ज्ञान, जीव रे कृपा कहले कृष्ण वेद पुराण। कि माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः ही भगवान का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, क्योंकि माया मुक्त है, माया मुक्त है। माया मुक्त रे जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः ही भगवान का ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान ने क्या, जीव रे कृपा कहले, भगवान ने कृपावश क्या किया है, क्या दिया है, वेद पुराण, भगवान ने अपने शास्त्र दिए हैं जिसमें भगवान ने अपने बारे में बताया है। भागवतम में आता है अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग मधोक्षते लोक सदानंद विद्वान चाक्रे सात्वत संहिता, कि अनर्थोपशमम साक्षात, कि एक व्यक्ति जो है भौतिक संसार से कैसे मुक्त हो सकता है वो नहीं जानता। भक्ति योगम अधोक्षजे, उसको भक्ति योग में जुड़ना है अधोक्षज की, वो नहीं जानता। लोकस अजानंतो, लोग नहीं जानते, ज्ञान उनको प्राप्त नहीं है। इसलिए सात्वत जो भगवान के भक्त हैं या वेद व्यास जी हैं, उन्होंने क्या किया है, चक्रे संहिता, उन्होंने संहिता की, ये श्रीमद् भागवतम की रचना की है कि भागवतम पढ़ के भगवान को जान सकते हैं और उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसको पढ़ सके, क्योंकि शास्त्र से ही भगवान की पुष्टि होती है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो पहली बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो जैसे ही जगन्नाथपुरी वहां पर पहुंचे, जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन किए, चैतन्य महाप्रभु इतने द्रवित हो गए तो तुरंत वो भागने लगे चैतन्य भगवान के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति, और भागते 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 वही बेहोश हो गए और उनके अंदर अष्टसात्विक विकार प्रकट होने लगे। तो बाकी जितने वहां कर गार्ड्स थे मंदिर के, आप सोचिए कोई व्यक्ति आए और तुरंत ही ऑल्टर के प्रति भागे तो क्या लगे, तो लगेगा कि कोई आतंकवादी है, ऐसा भी चीज होगा। तो उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया और ले जाने लगे। लेकिन वहां पर जो हेड प्रीस्ट थे वो कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देख लिया और लगा है तो सन्यासी है। तो जैसे उनके पास गए तो देखा चैतन्य महाप्रभु के अंदर अलग अलग विकार आने लगे, और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे तो देख सकते थे कि ये विकार किसी साधारण व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकते। जिस तरीके से वो सांस ले रहे थे, जिस तरीके से उनके मुख से झाग निकल रही थी, जिस तरीके से वो बेहोश हुए थे भगवान की तरफ भागते हुए, तो समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वो गार्ड को रोका, उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि इनको आप मेरे घर पे ले आए। तो वो सब जो है चैतन्य महाप्रभु को वहां ले आए, और पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्त लोग आ रहे थे। तो जब वो वहां पर पहुंचे जगन्नाथपुरी, तो वो पूछने लगे चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं। तो बातचीत हो रही थी गार्ड की, आप लोगों के बीच में ऐसे एक सन्यासी आए और भगवान के पीछे इतने मधोष थे कि भागते भागते वो बेहोश हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए। तो उनको बातचीत से पता चले कि चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए, तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे। तो सब भक्त लोग जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे चले गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है महाप्रभु को देखा और महाप्रभु से इतने आकर्षित हो गए थे, क्योंकि महाप्रभु बहुत सुंदर थे और बहुत जवान थे, लेकिन संन्यास आश्रम में थे। तो बड़े हैरान थे कि इतना सुंदर व्यक्ति संन्यास आश्रम कैसे स्वीकार कर सकता है, इतना आकर्षित। तो वो सोच ही रहे थे ऐसे कि सब भक्त लोग आ गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबकी सेवा की, और सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनों भी थे गोपीनाथ आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो उनको बुलाकर सबकी सेवा कर कर वो उनको जगन्नाथ मंदिर की तरफ महाप्रसाद लेने के लिए चले गए। लेकिन बीच में गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलने के लिए आए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछने लगे ये सन्यासी कौन थे, इनका क्या नाम। तो गोपीनाथ आचार्य कहने लगे कि इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और इन्होंने सन्यास लिया है केशव भारती से। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना तो उनका अच्छा भारतीय संप्रदाय संन्यास लिया, वो तो निम्न का है, मैं इनको जो है ऊपर सारस्वत संप्रदाय से संन्यास दूंगा, उनको शिक्षा दूंगा ताकि जो है वो संन्यास आश्रम में स्थित रहे, क्योंकि अभी तो ये नवयुवक हैं, कभी भी माया में गिर सकते हैं। जैसे गोपीनाथाचार्य ने सुना बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ना उनको कोई भारतीय संप्रदाय से जो है सारस्वत संप्रदाय में जाने की जरूरत है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य और बाकी शिष्य उनके वहां पर थे, उन्होंने सुना है परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो तुरंत बड़े क्रोधित हो गए, क्या प्रमाण है इसका परम पुरुषोत्तम भगवान है, प्रमाण देने के लिए तो आपको तर्क देना पड़ेगा। तो गोपीनाथाचार्य कहने लगे कि वास्तव रूप में भगवान जो है वो तर्क से समझे नहीं जाते। और फिर उन्होंने श्लोक उद्धृत किया कि अथापि देव पदाम्बुजे द्वई प्रसाद लेश अनुग्रत एव ही जनाति तत्व भगवत महिम्नो न चान्य को अपि चरम विचिन्वान। जिसके ऊपर प्रसाद लेश अनुग्रहता एवं ही भगवान का लेश मात्र ही प्रसाद जिसको प्राप्त हो जाता है, कृपा प्राप्त होती है, वही भगवान को समझ सकता है। कि हालांकि तुम्हें शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन क्योंकि तुम्हें भगवान की वह कृपा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए तुम चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे
कि चलो ठीक है, हमने तो शास्त्र पढ़े, हमें कृपा प्राप्त हुई, हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हें तो कृपा प्राप्त हुई होगी, तुम्हें तो शास्त्र पढ़े, तुम बताओ कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तुमने कहा निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु भगवान है और शास्त्रों में इसकी पुष्टि है। पहली बात तो तुमने भी देखा था जब वो बेहोश थे तो तुमने उनके अंदर जो दिव्य लक्षण प्रकट होते हुए देखे थे, पहला तर्क तो ये है। और शास्त्र से भी हम देखते हैं, तुमने भागवत से और महाभारत से श्लोक उद्धृत किए कि कृष्णा वनम तुषा कृष्णम संग उपंगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधसा, कि कलयुग में भगवान कैसे प्रकट होंगे, कृष्णा वनम कृष्ण का वर्णन करेंगे, तुषा अकृष्णम उनका रंग कैसे होगा, अकृष्ण, कृष्ण का रंग कैसा है काला, तो चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा होगा गोरा। संग उपंग अस्त्र पार्षदम संगी गणों के साथ पार्षदों के साथ वहां पर इकट्ठे होंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय और कौन सा यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ, यजंती ही सुमेधसा और जो उनकी भक्ति करेगा वो कौन कैसा होगा, बहुत बुद्धिमान। लेकिन साहब सारे कहेंगे नहीं 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 रुको 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 रुको, भागवतम में तो लिखा है कि भगवान का एक नाम है त्रियुगा, वो तो तीन ही युग में आते हैं, कलयुग में तो आते ही नहीं है। तो हंसने लगे वो, कलयुग में तो भगवान आते ही नहीं है, अब तुम कैसे कह सकते हो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान है, भगवान का एक नाम है त्रियुग, तीन युग में आते हैं, सत्युग द्वापर तीता युग में आते हैं, कलयुग में तो आते ही नहीं है। और वो हंसने लगे, गोपिनाचारी भी हंसने लगे, उन्होंने कहा सार्वमाचार्य तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने अरे कैसे, भगवान का एक नाम त्रियुगा तो है लेकिन भगवान तीन युगों में लीला अवतार में आते हैं, कलयुग में लीला अवतार में नहीं आते, लेकिन युग अवतार तो हर युग में आता है, तो कलयुग में भी युग अवतार तो आया, वो चैतन्य महाप्रभु है। और फिर उन्होंने महाभारत का श्लोक उद्धृत किया और इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु को स्थापित किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भगवान की स्थापना जो है भगवान ही करते हैं अपने शास्त्रों के द्वारा, तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं जानते हैं तो हम समझ सकते हैं ये पुरुष परम पुरुषोत्तम भगवान है और मुझे इनकी शरण लेनी है और शरण लेकर उनकी प्राप्ति करनी है। तो इसके साथ मैं विराम करता हूँ, 9 बज चुके हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी कोई प्रश्न है टिप्पणी है कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और फिर कर विराम दें। हरे कृष्ण। हाँ जी, अच्छा प्रश्न, कि एक बारी मैं इसका आंसर एक कहानी से देता हूं, कि एक बारी अक्सर लोग कहते हैं कि हैंड्स दैट वर्क आर बेटर देन लिप्स दैट प्रे, कौन सा ठीक है, लिप्स दैट प्रे या हैंड्स दैट वर्क। तो कहते हैं जो प्रार्थना करते हैं वो आलसी हैं, तो सच्चा हाथों से काम करना चाहिए। और इस तरीके से एक विवाद होने लगा, तो एक स्कूल में एक भक्त गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि सिर्फ प्रार्थना करना काफी है, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा। तो कंपटीशन होने लगा, 8th क्लास के बच्चे थे, तो कंपटीशन होने लगा कि सिर्फ प्रार्थना ही कृपा भगवान की काफी है कि प्रयास भी करना पड़ेगा। तो पूरी क्लास डिवाइड हो गई, तो कुछ जो लड़के थे और कुछ लड़की थी वो इस तरफ आ गए, नहीं प्रभु जी, हैंड्स दैट वर्क आर बेटर देन लिप्स दैट प्रे, जो हाथ काम करते हैं वो उन प्रार्थनाओं से ज्यादा अच्छे। और कुछ लड़कियां और कुछ लड़के जो है एक तरफ हो गए कि नहीं, लिप्स दैट प्रे आर बेटर देन हैंड्स दैट वर्क, तो कंपटीशन होने लगा। तो जब कंपटीशन होने लगा तो हमने कहा ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि हैंड्स दैट वर्क आर बेटर देन लिप्स दैट प्रे। तो जो कह रहे थे हैंड्स दैट वर्क, वो बच्चों ने, एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, उनका प्रभु जी हैंड्स दैट वर्क आर बेटर देन लिप्स दैट प्रे, जो हाथ काम करते हो ज्यादा अच्छा है, उन लोगों से प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने कहा कि इंग्लिश में भी कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तो प्रभु जी ने दूसरी तरफ देखा, दूसरे ग्रुप के पति, आपका क्या जवाब है। तो फिर एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, नहीं प्रभु जी, आपको लिप्स दैट प्रे आर बेटर देन हैंड्स दैट वर्क, कैसे, अगर आपको प्रार्थना करनी है तो हाथ तो जोड़ने ही पड़ते हैं। तो आप तो काम आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं लिप्स दैट प्रे आर बेटर देन हैंड्स दैट वर्क। तो प्रभु जी इस तरफ हो गए कि जो है वो इसका इनका क्या जवाब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब द्रौपदी का उद्धार आता तो उन्हें हाथ छोड़ने पड़े। तो हाथ छोड़ के वो भगवान की प्राप्ति हुई। तो फिर उन्होंने इनकी तरफ देखा कि आप बताओ, कहते हैं तो गजेंद्र के कौन से हाथ थे।
गजेंद्र के तो कोई हाथ नहीं थे,
फिर भी उसको भगवान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन डिबेट चलते रहा। तो सबने कहा ठीक है प्रभु जी, आप ही बताइए क्या सही जवाब है। तो उन्होंने कहा कि वास्तु रूप में दोनों ठीक है, लिप्स दैट प्रे एंड हैंड्स दैट वर्क बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ये तो पॉलिटिशियन वाला जवाब है, आप दोनों का मिक्स करके बोल रहे हैं। कहते नहीं, वैसे है कि जब वहां से प्रार्थना करें तो ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान की कृपा के ऊपर सब निर्भर करता है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद हम संघर्ष ऐसे करें कि सारा परिणाम जो है हमारे संघर्ष पर ही निर्भर करता है। दोनों चीज जरूरी है, क्राई एंड ट्राई। क्राई भी करना है, भगवान के सामने रोना भी है, और ट्राई भी करना है, प्रयास भी करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, श्रील प्रभुपाद जी वेस्ट जाने से पहले प्रार्थना लिखी, जलदूत पर प्रार्थना भी लिखी, लेकिन वेस्ट में जाकर भी कितना संघर्ष किया। दोनों चीजें, तो प्रार्थना करनी भी जरूरी है, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करना भी जरूरी है, और प्रयास और संघर्ष करना भी जरूरी है। ठीक है भाई, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, मिथाय गौर के मनंदे, हरे कृष्ण।